نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تلك الرسل تیسرا پارہ ہے. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 253. اس کا عنوان ہے تفریق انبیاء کفر ہے. تفریق بین الانبیاء، نبیوں میں فرق کرنا کفر ہے، اور فضیلت انبیاء حقیقت ہے. ان آیات میں ایک بڑا گہرا اصول بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے. انبیاء کرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، اور ہر نبی کو اپنے دور میں مختلف قسم کی فضیلت خوبی دی ہوتی ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے کوئی یہ کہتے کہ میرے دور کا نبی یا میرا نبی زیادہ بہتر ہے دوسرے نبی سے، اور کمپیریزن کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ہو، تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس کو تفریق بین الانبیاء کہتے ہیں. ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ بعض لوگ جس نبی کو سامنے دیکھتے ہیں اسی کی بات کو صحیح سمجھ کے دوسرے کا انکار کرنے لگتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری چیز ہے کہ فضیلت. ایک کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی صفت سے نوازا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، تو ایسا فرق کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بات تو انبیاء کرام کے لیے تھی، آج ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک گہرا اصول دے دیا، اور وہ کیا کہ جس طرح پہلے دور میں مختلف دور میں انبیاء کرام آتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے، اسی طرح نبیوں کے بعد اب یہی پیغام دینے کے لیے جو اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ ان کا انکار بھی یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے وارث ہیں اور ان کی رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جب بھی ایسا ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ امت زوال کے دور پہ ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین والوں کو بھیجتا ہے، ہر دین والے کو دوسرے دین والے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. یہاں خاص طور پہ یہ بات جو اختلافات کی بنیاد پہ کی گئی، اور یہی اصول اگر دیکھا جائے تو جیسے پہلے دور میں لوگ ایک نبی کو مان کے دوسرے کا انکار کرتے تھے، اس کو کفر کہا گیا، تو آج بھی امت کو اسی طرح کے چار خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور حنفی شافعی مالکی اور حنبلی ہونے کی ایک ٹرم جو ایجاد کر لی گئی، یہ بھی تفریق بین الامامین ہوگا، یا اماموں کے بیچ میں تفریق کرنا کہ ایک ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں، مانتے ایک کو ہیں. تو یاد رکھیے، جب ہم ایک راستہ لیتے ہیں تو تین کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. جب ہم دین کو چار ٹکڑوں میں بانٹ کے اس میں سے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں اور باقی کو ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، تو یہ تفریق ہوگی اور یہ کفر ہے. جس نے امت کو اس طرح بانٹا اس نے امت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا. ہاں، ہر دور میں دین کے نئے چہرے دکھیں گے، ہر دور میں آپ کو نئے نئے دین کی خدمت کرنے والے دکھیں گے. وہ اپنے دور میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے اور وہ امام مالک تھے، تو آج کے دور میں آپ کو عبداللہ بن باز، رسیمین اور ناصر الدین البانی جیسے چہرے دکھیں گے. یہ تاریخ چلتی رہے گی. آج امت مجھے لگتا ہے سسک رہی ہے. آج اتنا تعصب ہے ذہن میں، یعنی یہ تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ کل مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ 24,000 مسلم ہیں ٹوٹل وہاں اور 40 مسجدیں ہیں، اور آپ کو پتا کہ 40 مسجدیں بھی آباد نہیں ہوتی، وہ بھی جمعے کی مسجد ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے اپنی مرضی سے امت کو بانٹ دیا، اور ہر ممبر پہ دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی چند گلیوں کے بیچ میں 7-8 مسجدوں کو دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کریں کیا؟ ہمارا کام کیا ہے کہ اصل کو پکڑ لیں، قرآن اور سنت کو لے لیں، باقی جس کی جو بات اچھی لگتی ہے اس کو سونے پہ سہاگا اس کو لیتے جائیے، اور ہر ایک کی عزت کریں. لیکن جب دین والوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں رہتا، اور وہ ممبر جو اللہ کے نبی کی امانت ہے وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر مسلم تو مسلم، نان مسلموں کو یہ خبریں جاتی ہیں. मैं एक दफ़ा किसी जगह एयरपोर्ट पे थी सिक्योरिटी में, जब शुरू में वो चेक करते हैं तो ऐसी बात होने लगी उस औरत से जो चेकिंग में होती हैं, तो मैं हमेशा ऐसे मौके पे बहुत खुशी से ज्यादा बात करती हूँ उनसे कि उनको जरा झिझक है कुछ तो वो खुल के बात करें। तो मुझे कहने की आर यू सुनी, मुझे समझ नहीं ये सुनी क्या होता है। कहती सुनी, फिर मैं क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कहती शिया। जब उसने शिया का लफ्ज बोला ना, फिर मुझे समझ आ गया कि ये सुन्नी कह रही है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया ये दोला? कहती यस वी नो दिस, मुस्लिम हैव मेनी सेक्ट्स। यकीन करें मेरा सर नदामत से झुक गया। मैं कहा मैं मुस्लिम। यानी आप देखिए कि जब हम अपने एक दूसरे के बीच में इस तरह की तफरीक कर लेते हैं, नतीजा क्या निकलता है? आज उम्मत टूट गई, आज उम्मत का वो रोब खत्म हो गया। आज छोटे छोटे टुकड़ों में बट के तो आप दीन को फैलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक उम्मत बन के काम नहीं करना चाहते। आज हर बंदा जरा सा इख्तलाफ होता है अपनी कुर्सी अलग करके बैठ जाता है। जितने लीडर उतनी जमातें, उतनी ऑर्गेनाइजेशन, उतने इदारे, ये किसकी बातें रह गई? नतीजा क्या हुआ कि लोग टूटने लगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चीज दुरुस्त नहीं है। इस सारी चीजों से बचने का इलाज क्या है? और अफसोस की बात है कि जब दीन के नाम पे ऐसी बातें होती हैं, फिर अल्लाह का दीन नहीं कुछ और नाम प्यारे होने लगते हैं। उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है कि आखिरत भूली हुई है। जिस दिन सिर्फ नेकियों की कदर होगी, जिस दिन कोई नहीं पूछेगा बताओ तुम किस जमात से थे, किस ऑर्गेनाइजेशन से थे, तुम्हारा उस्ताद कौन था, तुम्हारे शागिर्द कौन थे, उस दिन तो बस एक ही गम होगा कि बताओ तुम क्या लेके आए हो। उसी दिन की बात अब अगली आयतों में आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया यौमन यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफिरूना हुमुज़्ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और ना शिफात, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला ही माबूदे बर हक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आए ना नींद, इसकी मलकियत में आसमान और जमीन की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और जो इसके इल्म में है किसी चीज का वो इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वुसअत ने आसमानों जमीन को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इकराह फित दीन कद तबैयना रुश्तु मिनल गई, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत जलालत से रोशन हो चुकी। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो इसमें हमेशा पड़े रहेंगे। ये थी आयत नंबर 254 से 257। इनका उनवान है अल्लाह की रजा को पालो इन्फाक की कीमत पर। यहाँ से लेके या अय्युहल्लज़ीना आमनू से सूरत के आखिरी रुकू से पहले तक माल की बातें होंगी। एक खूबसूरत सी तर्तीब बनती है कि यहाँ अल्लाह ताला ईमान वालों को दावत देते हैं क्या कि खर्च करो उस दिन से पहले कि जिसमें कोई तिजारत कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मुझे ऐसे लगता है इस आयत को पढ़ के कि जैसे हड़ताल का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको बताते हैं कि अगर वाकई तुम अल्लाह की रजा को पाना चाहते हो तो फिर तुम अपनी पसंद की हर चीज उसके रास्ते में दे दो। वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में अपनी मनपसंद चीजों को नहीं देता, दर हकीकत वो अल्लाह के दीन से संजीदा नहीं है। हम जिस चीज से संजीदा होते हैं ना, हम उसकी कीमत देते हैं। हम एक कपड़ा खरीदना चाहते हैं, हम उसमें सीरियस होते हैं तो हम उसके लिए हजारों भी खर्च करते हैं। हमें एक जेवर लेना होता है और हम उसके लिए संजीदा होते हैं, हम उसके लिए लाखों क्या करोड़ों भी लगाने लगते हैं। इसी तरह बच्चों की तालीम को देख लें, घरों को देख लें, जरूरत की चीजों पे हम खर्च करते हैं। जो चीज हमें प्यारी होती है हम उस पे खर्च करते हैं। किसी पे खर्च करना दरअसल हमारे उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार है। इसी तरह अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना इंसान के उस दीन से मोहब्बत का इजहार है। हमें अपने बच्चे तो प्यारे हों, हम उन पे तो खर्च करें, लेकिन अल्लाह के दीन पे खर्च ना करें, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह का दीन हमें बस उतना ही प्यारा है जितना कि हमारे माल और हमारी दूसरी चीजों के तकाजों से बाहर है। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह के रास्ते में तुम अपने आप को, अपने असासों को खर्च कर लो, अपनी मसलहतों को कुर्बान कर लो, तो तुम दीन में आगे बढ़ते जाओगे। और जब कोई बंदा इन्फाक की कीमत पर दीन को इख्तियार करता है तो उसके लिए दीन एक संजीदा हकीकत बन जाती है, और कोई किसी मामले में उसी वक्त संजीदा होता है जब उसकी कदर को जानता है। इसीलिए बताया गया कि तुम नहीं खर्च करना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है ना वो जात कौन है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, एक आयत है लेकिन 10 से ज्यादा जुमले हैं, 25 के करीब अल्लाह तला के नाम और सिफात इसमें पाए जाते हैं। कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना लगाना मुश्किल लगता है इसलिए कि तुम्हारी नजर में अल्लाह की अहमियत नहीं, और तुम्हें बताया जाए कि वो जात कौन है, उसके हैं सारे चीजें, उसने तुम्हें कुछ दिन के लिए ये चीजें दी, तुमने समझा कि ये मेरी हो गई। जिसको अल्लाह की जात की मार्फत मिल जाती है ना, फिर वो अपने आप को बचा के नहीं रखता। क्यों सहाबे कराम ले लेके फिरते थे कि अल्लाह के नबी कबूल कर ले। वो औरतें अपने बच्चों को लेके फिरती थी, वो अपने माल और असबाब को लेके फिरती थी, वो सारी रात बैठ के काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, और चंद पैसे जो जमा होते उसको लाके पेश करती कि अल्लाह के नबी इसको अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आखरत असल मसला है, और उनको पता था कि अल्लाह की जात ही वो जात है कि जो बंदे की चीजों की कदर कर सकती है। अल्लाह की नेमतों की अगर किसी जगह कीमत डलवानी है ना, तो सबसे ज्यादा उसकी कीमत आप वहीं डलवा सकते हैं जहां अल्लाह का रास्ता हो। दुनिया में आप कई दफा कुछ खरीदते हैं, आज खरीद के ले आए, कल इस्तेमाल कर लेंगे, कल उसकी एक टके की कीमत नहीं होगी। नए कपड़े की तो शायद कोई कीमत आपको दे दे, एक दफा आपके गले से उतर गया तो आपको कोई आधे पैसे भी नहीं देगा। इंसान तो इतना कमजोर है कि जिस चीज को उसके हाथ भी लग जाते हैं वो चीज भी नाकारा हो जाती है, लेकिन अल्लाह की जात जब बंदा उसके रास्ते में कुछ लगाता है तो उसको बढ़ा बढ़ा के लेता है। तो लिहाजा बात यही है कि अल्लाह की मार्फत, और लेकिन अल्लाह की मार्फत को पाने के बावजूद भी कभी कभी इंसान अल्लाह के रास्ते में संजीदा क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ खुशफहमियां होती हैं। फुलां बुजुर्ग मेरी सिफारिश कर देगा, मैं बख्शा जाऊंगा, फुलां जो है वो मेरे मामले में इस तरह कर देगा और अल्लाह ताला मुझे बचा देगा। कहा नहीं, आयतुल कुर्सी को जिसने समझ लिया शऊर के साथ, फिर ये नहीं हो सकता कि उसके जिंदगी में कुछ कमी आ जाए। ये वही आयत है कि जिसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना जन्नत में जाने की दलील बनाया गया। जो ये पढ़ लेता है उसको शैतान से बचा लिया जाता है, लेकिन कैसे? क्या हम भी आयतुल कुर्सी रात को पढ़ेंगे तो शैतान भागता होगा? कैसे भागे, हमें तो खुद नहीं पता। हमारे तो अपने घरों के शैतान नहीं भागते, कई दफा दिन में हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और इसके बावजूद हमारे घरों के शैतान नहीं भागते। असल बात है कि इसको शऊर से पढ़ा जाए, इसके ऊपर बहुत गौर की जरूरत है। एक सीडी है हमारे इस मौजू पे, लैसा कमिस्ली ही, के उस जैसा कोई भी नहीं, दो सीडीज हैं, वेबसाइट पे भी मौजूद होंगी दावा सीडीज में। आप में से जब भी किसी को मौका मिले तो सुनिए, और वाकई फिर इसको इस तरह समझ के सुनिए और पढ़िए कि जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो शैतान भाग जाए, क्योंकि शैतान को तो अल्लाह का एक जगह नाम लेना पसंद नहीं होता। कहाँ फिर इंसान इतने नाम अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मार्फत अता फरमा दे। और उसके बाद दीन के अंदर जबर की बात हुई, बात यह है कि जिसको अल्लाह की मार्फत हो जाती है ना, वो तो खुद दीन के अंदर दाखिला लेने के लिए पूरी कोशिश करता है, फिर वो बच के थोड़ी रहता है। मसलन दुनिया में अगर कोई अच्छा स्कूल होता है तो क्या स्कूल वाले आपके पीछे फिरते हैं कि आओ प्लीज हमसे दाखिला ले लो और रजिस्ट्रेशन करा लो? नहीं, लोग फिरते हैं। क्यों? कि लोगों को पता है कि ये बड़ी अहम चीज है, इसकी कदर है उनको। इसी तरह जिसको एक दफा अल्लाह की कदर होने लगती है ना, फिर वो दीन से बाहर नहीं रह सकता, चाहे वो नाम निहात मुसलमान हो तो शौरी दीन के तरफ आए, या फिर वो कुफर की तरफ हो। और उसको एक दफा अगर आप अल्लाह ताला का पैगाम दे देते हैं, रब की मार्फत देते हैं, तो फिर हो नहीं सकता कि वो पीछे रहे। इसीलिए फरमा दिया कि ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं। मुराद के कि दीन में आने में कोई जबर नहीं, किसी को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं बना सकते। शान नजूल में आता है कि कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी औलादों को दौरे जाहिलियत में यहूद बना दिया था, मन्नत मान लेते थे कि हमारा फलां काम होगा तो हम अपने बच्चों को ज्यूस बना देंगे। अब बच्चे ज्यू बन गए। अब जब दीन आया, ये माँ बाप दीन पे आए, इस्लाम आ गया, तो फिक्र लग गई औलादों की, पकड़ के जबरदस्ती उनको खींचने की कोशिश की कि इनको इस्लाम पे लाएं। अल्लाह ने कहा ऐसा जुल्म ना करो, तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी औलादों को यहूद और नसारा बनाने के। जिस तरह तुमने वहां कोताही की, अब दूसरी कोताही ना करो कि उनको जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाओ। लाना चाहते हो बिगड़ों को तो उनको अल्लाह की मार्फत दे दो, उनको रब से जोड़ दो, उनको मत अहकाम में उलझाओ, उनको मत मसाइल में उलझाओ, उनको एक दफा अल्लाह की हकीकत बता दो, फिर खुद पलट के आएंगे। इसलिए कि ये वो चीज है, कद तबैना रुश्द मिन अल गई, अंधेरा रोशनी से वाजे हो गया। अल्लाह ने इंसान को इसकी अकल दी है कि उसको हक और बातिल का फर्क पता चले। जब तक इंसान ना चखे तो ना चखे, एक दफा जब अल्लाह के दीन का मजा चख लेता है फिर तो वही पीछे हटेगा जिसके नसीब में ही कोई बदबख्ती होगी। इसलिए लोगों को अल्लाह के दीन के मसाइल बताने से ज्यादा अल्लाह की जात की कुर्बत देने की जरूरत है। जिसको एक दफा रब की मार्फत होती है, इंशाल्लाह फिर वो पीछे नहीं पलट सकता। लेकिन इस रास्ते में कुछ तागूत होते हैं। सबसे पहला तागूत तो इंसान का अपना नफ्स है, उसका नफ्स नहीं चाहता कि वो दीन की तरफ आए। मसलन अगर आप देखिए कि दीन शुरू होता है दीन सीखने से। हम सब अल्लाह की किताब सुन रहे हैं इस वक्त, हम सब जो यहाँ पहुंचे हम किन तागूतों से गुजर के पहुंचे? सबसे पहले तो हमारे नफ्स ने हमें रोका होगा, सो जाओ, क्या करना है। तरस खाएगा हम पे कि क्या फायदा, आप रोजे के बाद इतनी सुबह उठ के बैठ गए हो तो फिर दिन तो और लंबा होगा, थोड़ा सा सो जाओ। हमने उसको कुचला, हमने कहा नहीं जो मर्जी तुमको, हमने उठना है। फिर जो ही इंसान इससे निबट लेता है अंदर के तागूत से, तो फिर बाहर के तागूत आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा घरों की जिम्मेदारियां, बाज़ दफ़ा कुछ माली परेशानियां, कुछ ऐसे मामले के, और इंसान इन सारे तागूतों से होता होता फिर आगे अल्लाह के रास्ते तक जब पहुंचता है ना, तो वो हांफने कांपने लगता है। इतने महाज लड़के आना पड़ता है, यकीन करें ये शऊर का सफर है। अगर इंसान को इस रास्ते की कीमत पता ना चले ना, तो वो एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं आएगा। वो एक दिन तो किसी के कहने पे आ जाता है, मजबूरी है, दूसरे दिन तभी आएगा जब उसको वाकई शऊर होगा कि ये देना नहीं ये लेना है, ये मेरी खैर की बात है। फिर वो सिर्फ सुनता नहीं, वो लिखता भी है। वो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता, फिर वो उसके अंदर कुछ लफ्ज़ लिखता है ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। मैं हर साल जब दौरे कुरान कराती हूँ, अल्लाह की तौफीक से मैं एक नया कुरान लेती हूँ और उसमें मैं नए नोट्स बनाती हूँ और नए तरीके से लिखती हूँ। क्यों? कल मेरे बाद मेरे लिए सदका जारिया होंगे, कोई पढ़ेगा इन कुरानों को, मुझे फायदा होगा। मैं क्यों अपने हाथों को महरूम करूँ? इसीलिए मैं आप सब सुनने वालों को कहूंगी कि अपने आप को महरूम ना करें। आपके कान तो अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, आपके हाथ क्यों नहीं सुन रहे? आपकी आंखें क्यों नहीं देख रही इन तर्जमों को, और क्यों आपके हाथ छू नहीं रहे प्यार से मोहब्बत से इस कलाम को कि जिसको दिल चाहता है बार बार छुए, और अगर इजाजत होती चूमने की तो इसको चूमने को दिल चाहता है। तो अपने आप को बेहतरीन इस्तेमाल करें, गेट मोर फ्रॉम योर लाइफ। एक एक चीज, एक एक नुकता जो आपके हाथ से लगते हैं, हाईलाइट जो आप करते हैं कुरान पाक को, वो कल इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा और आपके नामे अमाल में तुलेगा। अब तागूतों की बात करने के बाद कुछ जीते जागते तागूतों का जिक्र आगे आ रहा है, जो मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह के नेक लोगों के सामने आए। वो क्या थे? अलम तरा इल्लसी हाज इब्राहिम फी रब्बी अनाताहुल्लाहुल मुल्क, क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की तरफ से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये थी आयत नंबर 258। इसका उनवान है नमरूद को हरीफ नहीं मदऊ बनाया। नमरूद को हरीफ नहीं, हरीफ कहते हैं मुखालिफ को, दुश्मन, हरीफ नहीं मदऊ बनाया। मदऊ कौन होता है? जिसको दावत दी जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस दौर में दुनिया में आए, वो दौर वो था कि जब नमरूद नाम का एक शख्स हुक्मरान था। उस दौर में लोगों का तसव्वुर क्या होता था कि कुछ लोग हैं जो दुनिया में वो अल्लाह ताला का नौजुबिल्ला अवतार हैं या इंसानी पैकर में खुदा हैं। कदीम इराक के जो बादशाह नमरूद थे, उसका मामला भी यही था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ये आया, इसकी कौम जो थी उसको सूरज देवता का अवतार मानती थी। इनका ख्याल था कि असल खुदा जो है वो सूरज है। अब सूरज को सजदा उल्टा होके तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा जमीन पे ये नमरूद जो उसका एक अवतार, जो उसका एक रूप हमारे सामने फिर रहा है, इसको हम सजदा करेंगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह तआला की पुकार दी, तौहीद की दावत थी, सरासर गैर सियासी बात थी। अल्लाह का पैगाम, एक अल्लाह को मानना, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन नमरूद को शक पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत में तो सूरज एक मखलूक है, असल जात तो रब है। उसको लगा कि अगर सूरज को लोगों ने मखलूक जान लिया तो मेरी खुदाई तो खतरे में पड़ गई। लिहाजा उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक मुनासरा किया, बहस मुबासे के लिए बुलाया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त उलझने की बजाय और उसकी बात को मनाजरे और मुबासे और डायलॉग में बदलने की बजाय उसको एक मदऊ समझा। मदऊ कौन होता है? जिसको दावत दी जाए। जब कभी हम किसी के सामने अल्लाह की बात करने जाएं, तो नोट कर लीजिए अपने लिए कि कभी उसको अपना मुखालिफ ना समझें, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी गैर मुस्लिम रियासत का बादशाह ही क्यों ना हो। क्योंकि जब दाई दीन किसी को हरीफ समझ लेता है तो बात कैसे करेगा? आप पहले से सोचे बैठे हैं कि आपके सामने आपका दुश्मन है। जब आप किसी को अपना दुश्मन कहेंगे तो आपकी आवाज में जोश पैदा होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप जोर जोर से मुक्के मारेंगे टेबल के ऊपर, आपकी आंखें सुर्ख होने लगेंगी, और दुश्मन के सामने तो वाकई घुराते हैं लोग। लेकिन जब आप किसी को मधु समझेंगे, आपने तो दावत देनी है, आपने इनको नहीं खत्म करना, इनके कुफर को खत्म करना है। जब आपको ये पता चलता है कि इस्लाम की जंग काफिर से नहीं कुफर से है, तो फिर आप उसके कुफर को दबाएंगे। बार बार नमरूद जो था वो गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहा है, और इब्राहिम उलझने की बजाय दूसरी दलील दे देते हैं। चूंकि सूरज देवता का अवतार था, तो पहली ही दलील ऐसी दे दी कि बताओ सूरज को मशरिक से मगरिब में लाओ। अगर तुम सूरज देवता के अवतार हो तो सूरज को तो तुम्हारी माननी चाहिए, तो फिर तुम जरा इसको दाएं से बाएं से या बाएं से दाएं में करके दिखाओ। لیکن وہ نہیں کر سکا. فبوہت اللذی کفر. یہ بات ہوتی ہے دعوت میں, یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے دلائل پیش کریں کہ سننے والا اس کو سن کے جواب نہ دے سکے, لیکن کبھی غصے سے نہیں, کبھی زبان سخت نہ ہو, کبھی بڑی بات نہیں کرنی. اور آپ دیکھیے کہ دل سے مان گیا لیکن زبان پہ نہ آیا, کیوں؟ تعصب, رکاوٹ. آپ اپنے حصے کا کام کر دیں, آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع بیدار کر دیں, ان کے دل بتائیں گے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے یہ حق ہے. وہ مانے نہ مانے ان کو چھوڑ دیں, ہم منوانے نہیں آئے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری بات ہم کو سکھا دی. پھر اسی طرح ایک آخری بات جو اس آیت میں دیکھی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر چیز کو دیکھنے کے مختلف رخ ہوتے ہیں. مثلا اس وقت اگر میں اس روم میں دیکھوں تو مجھے سامنے لگا ہوا وہ بینر دکھ رہا ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہا. آپ کو ہو سکتا ہے پیچھے لگی ہوئی اسکرین دکھ رہی ہوگی جو مجھے نہیں دکھتی. ہمارا اینگل فرق ہے نا, ڈفرینٹ جو اینگل ہوتا ہے نا, انسان جس اینگل سے جس چیز کو دیکھتا ہے نا اس کو وہ ویسے ہی دکھتی ہے. اس لیے ایک چیز اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو ظلم دکھے گی, اور اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنا حق دکھے گا. ہر ظالم نے جس پہ بھی ظلم کیا اس نے یہی سوچ کے کیا کہ یہ میرا حق ہے, میں کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. ایک دفعہ ظالم کو پتہ چل جائے نا کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو کبھی وہ نہ کرے. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے مزاج کو بدلے. اگر کہیں کوئی چیز آپ کو غلط دکھ رہی ہے تو اپنے اینگل کو چینج کیجئے. رخ چینج کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے, آپ لوگوں کے رخ بدل دیں, ساری چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو اللہ کی طرف ڈال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو ظلم کر رہے تھے کل وہ پھر احسان کرنے والے بن جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے ہوئے, لیکن جب لوگ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ پھر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگلی ایک اور مثال, او کلسی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا, یا اس شخص کے مانے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اسے زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اس کو اٹھایا, پوچھا کتنی مدت گزری, کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا, بس اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ, ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں, تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا, جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندے لے لو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو, پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو, پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعَلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 259 سے 260, ان کا عنوان ہے علم الیقین کے درجے. یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 تجربات کا ذکر ہے. ان کا تعلق انبیاء کرام سے ہے. پہلا ذکر حضرت عزیر کا ہے, 5ویں صدی قبل مسیح کی شخصیت ہے, اور دوسرا حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسے واقعات دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ان کا علم جو ہے وہ ظاہر پہ دکھنے لگے, غیب کے پردے چھٹ جائیں, اور وہ بات جو وہ دوسروں کو کل بتائیں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اس کو مشاہدے کا علم کہتے ہیں, اس کو علم الیقینی کہتے ہیں. جب کوئی چیز انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو دوسرے کو بتانی زیادہ آسان ہوتی ہے. اسی کلیے کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا, اور اس میں آپ نے جنت اور جہنم کے جو معاملات تھے وہ دیکھے, اور اس کے بعد جب آپ نے بات بتائی تو اس میں مزید جو ہے وہ شدت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان کی وہ کیا ہے کہ نبی جب بھی کبھی کسی کے پاس کوئی پیغام لے کے آتے ہیں تو اس سے پہلے نبیوں کی اپنی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہوتی ہے. ہر نبی کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی, چند ایک ایکسیپشنز کے سوا. اب 40 سال کا جو وقت ہوتا ہے وہ اپنے قوم کو سمجھ چکے ہوتے ہیں, قوم ان کو ایک سچا انسان پا چکی ہوتی ہے, اور وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. اس کے بعد پھر مشاہدے کو ساتھ لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو لے کے جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی بات میں مزید زور پیدا ہوتا ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو تو ہمیں اپنا کردار بے داغ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے علم کو پختہ کرنا پڑے گا, کائنات میں اس طرح غور و فکر کرنا پڑے گا, تدبر کرنا پڑے گا. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں مردوں کو زندہ کرنا, कितनी बड़ी निशानी है। आज हमें तो ये बड़ी लगती है, लेकिन अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं। और हमारा ईमान है कि ये वाकयात हो चुके। अब देखिए, कोई परिंदों को ज़िबा करे, उनके सार पार सब चीज़ों को अलग कर दे, फिर उनको मिला के अलग उनके गोश्त रखे, और कोई पुकारे और सारे उड़ते हुए आए। हमारा ईमान है कि ये हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं। बाज़ लोग जिन्होंने मौजज़ात का इनकार किया, उन्होंने ऐसी आयतों पे आके पता नहीं क्या कुछ तावीलें की कि पता नहीं ऐसा हो गया और वैसा। यकीन रखिए कैसा हुआ, क्यों? कि जिस जात ने आज ये किया वो कल भी करेगा। और मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है कि जिसको इंसान जब शऊर के साथ समझ जाता है, मान जाता है, तो उसको फिर यकीन आने लगता है कि वाकई इस दुनिया के बाद जब मैं अगली दुनिया में निकलूंगा तो मुझे जिंदा होना है। और इसी बात को फिर अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे सामने पेश किया कि जब किसी को कल जिंदा होने का एतबार आ जाएगा ना, तो फिर उसकी जिंदगी का एक और ही रुख खुलेगा। और वो क्या है? मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना ईजा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है। इन पर ना तो कुछ खौफ होगा और ना वो उदास होंगे। नरम बात कहना और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईजा रसानी हो। अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईजा जाकर बर्बाद न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे न कियामत पर, इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मीं बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और बिल्कुल सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। ये थी आयत नंबर 261 से 264। इनका उनवान है हर अमल एक बीज है। आप देखिए कि दुनिया में हम जो भी अमल करते हैं ना, वो एक बीज की तरह है। जो इसको दुनिया की जमीन पे डालता है, यानी दिखावे या रियाकारी के लिए, उसको उसका फल इसी दुनिया में मिल जाता है। और जो इसको आखरत की जमीन पे डालता है सिर्फ अल्लाह ताला से अजर लेने के लिए, फिर उसको अल्लाह ताला से इसका अजर मिलता है। वो लोग जो दुनिया की शोहरत और दिखावे या रियाकारी के लिए खर्च करते हैं, उनको दुनिया में इसकी बहारें नजर आ जाती हैं, लेकिन जब आखरत की सरजमीन पे वो देखेंगे तो उनको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने शोहरत और इज्जत पाने के लिए कुछ खर्च करने को कैसे बता दिया कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की इस सिफत पे यकीन नहीं रखते कि जो आज खर्च करेंगे कल उसका बदला मिलेगा। अगर गंदम का कोई पौधा देखा हो तब खुद ही देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए कितनी निशानी रखी। एक दाने के ऊपर 100 दाने लगते हैं, फिर 700 तक वो चीज पहुंच जाती है। अल्लाह ताला ने हमें जो मिसाल दे के यहाँ समझाया, तो इसी को अगर हम सामने रखते हुए देखें कि हमारी जो नेकियां होंगी कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ, वो कितनी ज्यादा यानी बढ़ती होंगी। यकीन तो अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद भी आ ही जाता है, लेकिन अगर हम उसको अपनी आंख से देख लेते हैं तो और अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला बंदे के अमलों को कैसे बढ़ाता है। आप देखिए कि आप कोई एक नेकी करते हैं और उस एक नेकी के बदले में फिर क्या होता है, कोई आपको नेकी करता देख के दूसरा भी वही नेकी करने लगता है, फिर दूसरे के उस नेकी को करते देखकर तीसरा करने लगता है। ये छोटे छोटे सिट्टे बनते जाते हैं और एक वक्त आता है कि एक ऐसा खोशा बन जाता है कि जिसको आप महसूस करेंगे कि वो अपना हुसन रखता है। दीन का काम जब भी कोई इंसान करता है तो इब्तिदा में वो तनहा होता है। आप अगर आज अपने घर से उठ के आई हैं और हो सकता है कि आप तन्हा हैं, लेकिन आप तन्हा नहीं रहेंगी ज्यादा दिन। इंशाल्लाह कल वो दिन दूर नहीं कि आपके साथ आपकी कोई दोस्त, आपके के घर में से कोई आपकी बेटी, कोई बहन मिल जाएगी, फिर आप दो बन जाएंगी, फिर आप दो मिलके कोशिश करेंगी तो आप दोनों के घरों का माहौल बदलेगा और इस तरह आप 2 से 10 बन जाएंगे। अल्लाह के यहाँ जमा नहीं है, मल्टीपल है। बस हम कहते हैं ना 2 जमा 3 5, अल्लाह ताला कहते हैं 2 ज़रब 3 6, यानी अल्लाह ताला के पास मल्टीपल्स चलते हैं, प्लस साइन नहीं चलता। ऐसे बंदे की नेकी जिसकी एक नेकी को अल्लाह ताला 700 नेकियों से भी बढ़ा दे, आप बताइए क्या फिर वो नहीं करेगा? दुनिया के फायदों के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो कितना, हमने कितना खर्च किया? मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, अगर आप वाकई उसके लिए जहनी तौर पर तैयार हो तो आप करके देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ अपने कपड़ों की एक असेसमेंट करके देख लें, आप तक जितने इस वक्त आपके प्रेजेंट कपड़े मौजूद है ना वार्डरोब में, सूटकेसेस में, कॉमन यूज के नाइट सूट, वेडिंग ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, बाकी तो मुझे नाम भी नहीं आते। बैठ जाए और अपने 10-10 जोड़ों को लेके बैठ जाए, उनकी कीमत लिखे, कल कितने का बना, आप उस पर कितना लगा चुकी वो करके देखें। मेरा ख्याल है कि दिल बैठने लगेगा आपका, सिर्फ आप अपने कपड़ों को जमा करें। मैं जेवर की तो बात ही नहीं करती, मैं तो हैरान होती हूँ कि एक एक औरत इस वक्त 5-5, 6-6 लाख का जेवर का सेट पहन लेती है। अगर तो अल्लाह की देन है, लेकिन जरा सोचिए उसकी वैल्यू क्या है। जिस दिन गोल्ड का जेवर आप वापस करने जाते हैं ना, उस दिन आपको पता चलती है इस दुनिया की हकीकत। एक दिन पहले आप ले आए या एक हफ्ता पहले आप खरीद लें वो जेवर, और वो आपको 1 लाख का मिलता है। किसी मजबूरी से अगर आपको वो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद बेचना पड़े, तो वो 1 लाख की बजाय 60 हजार का रहता है। और सुनार डंके की चोट पे कहते हैं कि 60% आपका होगा, 40 हमारा होगा, ये की सूरत है। और पुराना कर देंगे तो शायद वो 40 भी ना दे। ये वो दुनिया है। जब दुनिया की जमीन में हम कोई बीज डालते हैं ना, तो उसको कीड़ा लग जाता है, उसको सुसरी पड़ जाती है, वो इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी नजरों से भी उतर जाता है। देखिए, दूसरे तो हमारी चीजों की क्या कदर डालेंगे, हम अपनी चीजों को खुद ही देख लें। वो चीजें जो कल तक लेने के लिए तरस रहे थे, कितनी लड़ाइयां करी, कितनी मेहनतें करी शौहर से कि ये चीज जरूर लेनी है, और आज वो चीज दिल से उतरी हुई है, क्योंकि आज उससे बड़ी चीज आ गई। हम तो खुद अपनी पुरानी चीज को नहीं पहनते, हमें तो खुद अपनी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो जिस चीज को हमने इतना डिवेल्यू कर दिया, कल उसकी अल्लाह के यहाँ क्या कदर होगी। हाँ, खा लिया, पी लिया, खत्म, दो हिसाब, ठीक है, जायज है नाजायज है एक अलग बात है, खत्म। आखिरत की जमीन में जब एक बीज डालते हैं ना, तो वो बड़ी फर्टाइल है, लेकिन उसको फर्टाइल बनाने के लिए कुछ मजीद चीजों की जरूरत होती है। और वो क्या, कि दिल की खुशी से करें। आप दीन के लिए देखिए, हमारे यहाँ एक अमूमन तस्वुर क्या है कि दीन के लिए खर्च करने का तरीका क्या है, कि मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में चंदा डाल दो, ये है हमारा दीन। ना हमारा दर्द उसमें लगा, ना हमारी एफर्ट लगी, ना कोशिश लगी। हाँ, हम ये करें कि जाके कुछ गरीबों के घरों में बांट दें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने नेकी के बहुत सारे पहलू बताए। लेकिन असल बात क्या है, कि इंसान अपने आप को चेक करे कि वो नेकी जिसमें मेरा भी कुछ लगे। सिर्फ माल देने से वो अजर नहीं मिलता जो जान देने से मिलता है। बस दफा तो इंसान का अपनी जात पे खर्च करना भी उस खर्च से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो किसी दूसरे को आप देते हैं और बेपरवाह रहते हैं। बस अगर आप देखिए कि आप अपनी जात पे लेके बैठते हैं कोई भी चीज, आपका वक्त लगता है, आपकी एफर्ट लगती है, आपकी सोच लगती है, आप उस चीज को अपने इस्तेमाल में लाते हैं, आप उससे कुछ आके खैर की बात करते हैं। बस अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए मेहनत का है, मुझे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं इससे खुद फायदा उठाऊंगी ना। और मैं ये कहूँ नहीं मुझे ये अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना है, मैं जाऊँ किसी मस्जिद में दे दूँ, जी आप मेरा कंप्यूटर रख लें, आप इस्तेमाल करें। यकीन करें, वहाँ 4 और भी पड़े होंगे जिसपे मिट्टी पड़ी होगी, जहाँ इस्तेमाल करने वाले नहीं होते, वहां तो बड़े बड़े सदका जारिया जाया हो जाते हैं। जिस तरह किसान कोई बीज डालते वक्त देखता है कि किस जमीन पे डाल रहा हूँ, मेरा बीज मेरी खेती में डलेगा या बाहर फुटपाथ पे डलेगा या बाहर कहीं पगडंडी पे डल जाएगा जो आने वालों के कदमों में रुल जाएगा, इसी तरह खुदारा अपनी नेकियों को जाया ना किया करें। ये कीमती माल होता है, ये मेहनत की कमाई है, इसको दे के चेक तो करें कहाँ दिया क्या किया। हमें ये नहीं कहा कि लोगों को ढूंढो और करो और देने के बाद तकलीफ दो, नहीं, अजा और तकलीफ नहीं, देने से पहले सोचो, देखो कहाँ देना है, कहाँ देने से मेरा बढ़ता है, कहाँ मेरा बढ़ावा मेरे लिए 1 गुना बढ़ता है, कहीं 10 गुना बढ़ता है। दुनिया में आपको बिजनेस करते हैं, आपको कितना यकीन होता है कि यहाँ 10% प्रॉफिट है, यहाँ 20% है, यहाँ 50% है, कौन सा लेंगे, जहाँ ज्यादा होगा। तो दीन के लिए खर्च करते वक्त भी देखिए कि किस जगह खर्च होगा। मसलन अगर आप देखिए कि आप किसी को खाने का एक लुकमा खिलाते हैं, गरीब का पेट भरते हैं आप, उसका पेट भर गया, जितनी देर उसके पेट में वो लुकमे रहेंगे, इंशाल्लाह ताला उसकी नेकियां आपको मिलेंगी। अगर वो दीन सीख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसने उस दौरान कोई कुरान याद किया है या उसने कोई दीन का हुक्म सीखा है, आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे गरीब को खिला रहे हैं कि जिसने उसी खाने को खा के एक फिल्म देखी, आपका देर कहाँ गया। कोई नेकी कर भी ली तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे उसके पेट में रहा, हमने क्या किया। नेकी के मौके ढूंढने चाहिए, वो निगाह ढूंढे इंसान के जिससे उसकी नेकियों के फल लगे, एक नहीं बल्कि उसको 700 दाने मिलने लगे। हाँ, कुछ कीड़े हैं जिसकी वजह से खड़ी फसल खराब होती है, और वो क्या, बिलमन वल अजा, देने वाले को फिर बाद में जतलाना नहीं चाहिए। हमारा हाल क्या है कि पहले अपनी ही ज़कात से उनको देते हैं चीजें, ताकि इनके ऊपर हमारा रोब चलता रहे, और वो समझे बीबी जी ने हमें तनहाई इस दफा ज्यादा दी है। असल में वो हमारी ज़कात के कपड़े होते हैं, ज़कात की चीजें होती हैं, उनके घर बनवाते रहते हैं, कतन जायज नहीं है। याद रखिए, जिससे आपने उसके बदले में कुछ फायदा कुछ दबाव ही ले लिया, आपने तो अपने नाम पे डाल दिया। और एक तो देते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, मिसाल है आज जरा अपनी किसी मासी को 2000 रुपये दे दें, आपसे वो मांग के ले जाए, इत्तफाक से कल ही वो देर से आए, अब कहीं देखा भाग गई ना। इनके साथ तो जितना करो ना, ये यही करते हैं, ये तो होते ही बेफैज लोग हैं, और इनके साथ तो ये और वो। अब देखिए, बाज़ दफ़ा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ दे बातें करते हैं ना, वो बड़ी तकलीफ दे। और बाज़ दफ़ा जब अल्लाह के रास्ते में बड़ी मोहब्बत से अपनी कोई चीज़ देना भी चाहते हैं, तो देते वेते भी कहते हैं ये बेल तो मुझे बड़ी पसंद है, इसको तो नोची लो, ये कहीं और लग जाएगी, ये बटन तो बड़े कीमती आए थे, ये कहीं और लग जाएगा, और दुपट्टा तो बड़ा ही खूबसूरत है, इसको तो और ही किसी सूट के साथ लगा लूंगी, और उसको एक नुचा पुचा सूट दे देते हैं कि ये रख लो। अपने लिए लेते हैं तो क्या मेयार है, और जब ऐसे मुलाजमों के लिए खरीदते हैं तो क्या कहते हैं जाके दुकानदारों को कि कोई देने दिलाने वाली चीज़ दिखाओ। नहीं, अपने आप को सेंट पे रख लें। देखिए, किसी के साथ कोई मामला करते हुए आप अपने आप को उस जगह रख लें कि कल अगर कोई मेरे साथ ऐसा मामला करे तो फिर मेरा क्या होगा। और बाज़ दफ़ा वो रियाकारी की नेकियां कि जो कैमरे की जद में चेक लेते और देते वक्त, तस्वीरें खिंचाते वक्त हों, सिलाई मशीनें आप दे रहे हैं और आप पूरे मुल्क में अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं, तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को एक ऐसी चट्टान से मिसाल दी है, थोड़ी सी मट्टी पड़ गई, थोड़ी थोड़ी नेकियां दिखती हैं ऊपर, लेकिन जो ही बारिश आएगी वो सब बिखर जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारी नेकियों को ज़ाया ना करे, हमें ज़ाहरी बेकीमत नेकियां करने की बजाय वो नेकियां करने की तौफीक दे कि जो देर पा हो, जो अंदर तक जिसका असर चला जाए। फिर एक और मिसाल आगे दी गई, व मसलुल्लसीन युनफिकून अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह, इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे, वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी हो तो फुहार ही काफी है। अल्लाह ताला तुम्हारे काम को देख रहा है, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों, हर किस्म के फल मौजूद हों, इस शख्स का बुढ़ापा आ गया, इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ये थी आयत 265 से 266, इसका उनवान है किए कराए पर पानी ना डालो। जब इंसान कोई भी काम कर लेता है ना, तो उसके बाद फिर उस पर जम जाएगा, तभी उसकी उसका अजर है। इन आयतों में जो मिसाल दी गई, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इससे मुराद वो शख्स है कि जो सारी जिंदगी नेकियां करता रहा लेकिन आखिरी उम्र में नेकी छोड़ के शैतान के रास्ते पे लग गया। हम कितनी नेकियों के इरादे करते हैं, तमन्ना भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं, और लेकिन जब कभी फिर हमारा दिल भर जाता है तो हम छोड़ देते हैं, फिर हम उस नेकी को छोड़ के किसी और तरफ लग जाते हैं। कोई मसरूफियत जिंदगी की ऐसी आ जाती है, कोई रूटीन लाइफ चेंज हो जाती है, कहा ऐसा ना करो। वरना क्या हाल है कि एक बूढ़ा शख्स जो सारी जिंदगी बाग लगाता रहा, बाग भी अच्छा था, हिम्मत भी थी, अब बूढ़ा हुआ, आइंदा मेहनत नहीं कर सकता और बाग को एकदम आग जला के रख गई। ये रियाकारी भी हो सकती है, ये इंसान के दिल में इतनी ही नेकी के बारे में शक आने लगे, तो ऐसी तमाम चीजें इंसान के किए कराए पर पानी डाल देती हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम नेकियों से महफूज रखे कि जिसको हम अपने ही हाथों से जाया कर दें और बिल्कुल बातिल कर दें।